अरे मुसलमान हो, तुम अपनी कसमों को आपस में एक दूसरे को धोखा देने का जरिया न बना लेना, कहीं ऐसा न हो कि कोई कदम जमने के बाद फिर उखड़ जाए। और तुम इस जुर्म की पादाश में कि तुमने लोगों को अल्लाह की राह से रोका, बुरा नतीजा देखो और सजा भुगतो। अल्लाह के अहद को थोड़े से फायदे के बदले न बेच डालो, और जो कुछ अल्लाह के पास है वो तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है अगर तुम जानो। मा इंदकुम यनफदु व मा इंदल्लाहि बाक, हाईलाइट करिएगा। जो कुछ तुम्हारे पास है वो खर्च हो जाने वाला है, और जो कुछ अल्लाह के पास है वो ही बाकी रहने वाला है। क्या कुछ है आपके मेरे पास? माल, औलाद, जेवर, दौलत, सब कुछ। अल्लाह कहते हैं तुम्हारे हाथों में इतनी बेबरकती है कि जो कुछ है खत्म हो जाएगा, या तो तुम खुद ही खर्च कराओगे जाके फजूल खर्चियों में, एक्स्ट्रा खर्च करके आओगे, या चोरी हो जाएगा, या गुम हो जाएगा, या टूट जाएगा। सच है कि नहीं? हाथों से फोन गिरते हैं और चिकनाचूर हो जाते हैं, कुछ नहीं कर सकते हम। तो क्यों ना उसको महफूज हाथों में डालें, क्योंकि अल्लाह के पास जो चीज चली जाती है वो बाकी बचती है। एक दफा नबी सल्लम के पास बकरी आई, हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने उसका सारा गोश्त बांट दिया, दस्ती का टुकड़ा, यानी जो गोश्त नबी सल्लम को पसंद था वो रख लिया। शाम को जब आप आए तो आपने कहा कि आयशा गोश्त का क्या हुआ? कहने लगी कि सारा बट गया, बस एक गोश्त का टुकड़ा बचा लिया आपके लिए। सारा बट गया, एक बच गया। आपने कहा नहीं आयशा, सारी बकरी बच गई सिवाय इस गोश्त के टुकड़े के। ये थे वो लोग। हम तो पहले अपना घर भरे, पहले अपने कुर्बानियों पे दिखा करें क्या करते हैं। राने भी हमारी, दिमाग भी हमारा, और गरीबों के छिछड़े और कीमा कटावार जो उजड़ी है वो ले जाए, इल्ला माशाल्लाह। तो इस आयत को फिर पढ़े, मा इंदकुम यनफदु व मा इंदल्लाहि बाक। इसका एक हैंडआउट बनाते हैं, इसको लिखने के लिए दें किसी को, इसका स्टिकर बना के अपने घर में मुख्तलिफ जगहों पे डाल लें। जिस चीज में दिल अटका रहता है ना हर वक्त, या जो चीज नहीं मिली अभी तक, उसकी तस्वीर पे ये लगा दें। मिल भी गया तो क्या फायदा? कितने बेजान खिलौनों से हम खेलते रहते हैं, चमचियां देख रहे हैं, गिन रहे हैं, कभी शॉपिंग करते हुए सोचे। और कभी कभी गुजरना पड़े ऐसी जगहों पे, मैं सोचती हूँ कौन इतना फारिग है जो इतनी चीजों में ढूंढ ढूंढ के चीजें लेगा। ये खाने की चमची, ये पीने की चमची, ये बच्चे की चमची, ये ऑलिव निकालने की चमची, ये फलां चमची, बड़ी चमची, छोटी चमची, स्पून फलां, ये टेबल स्पून, और जिसको पता ना हो कहते इसका टिकट ही नहीं आते। देखो टी स्पून के साथ खाना खा रहे हैं और बड़ी स्पून के साथ चाय में चमचा फेर रहे हैं। भाई होगा इससे क्या? जैसे प्रोटोकॉल, कभी देखे जब मेहमान आते हैं कितने किस्म के बर्तन बाहर निकल आते हैं, छोटे बड़े प्लेटें, और अपने खाए हुए में दोबारा नहीं खाते, अपने पिए हुए में दोबारा पानी नहीं पीते। लेकिन अल्लाह कहते ये सब चला जाएगा। बोले नज़ीन सबरू, और हम जरूर सबर से काम लेने वालों को इनके अजर इनके बेहतरीन अमाल के मुताबिक देंगे। ये कौन सा सबर है? कनात, लिख लीजिए। सबर का जहां जिक्र है उसमें मुख्तलिफ मानी होते हैं। अच्छा ये बताइए कि सारी चीजें मिल जाएं तो खुशी भी मिल जाती है? लाजमी है कि जिसके पास ये सब कुछ है वो खुश भी हो। लोग इसके बावजूद दुखी, इतने खूबसूरत घर होते हैं लेकिन लोग रो रहे होते हैं, दुखी होते हैं, परेशान हैं। असल खुशी किसकी है? अगली आयत, ये आयत तदब्बुर भी होगी और आखिरी आयत भी इंशाल्लाह। मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन अव उन्सा व हुवा मोमिन, जो शख्स भी नेक अमल करेगा ख्वा वो मर्द हो या औरत, बशर्ते के वो मोमिन हो, हम इसे दुनिया में पाकीज़ा जिंदगी बसर कराएंगे और आखिरत में ऐसे लोगों को इनके अजर इनके बेहतरीन अमाल के मुताबिक बख्शेंगे। ये उन आयतों में से जो मुझे ट्रैक की थी और मैं इस किताब की तरफ आई थी। मैंने इस आयत पे शायद दर्स सुना था किसी का बहुत पहले, हयातन था ये वो। अल्लाह कहते जो भी अमल साले करेगा मैं उसकी जिंदगी को पाक कर दूंगा। क्या होती है जाते तैयबा? खुराफात से पाक, रस्म रिवाज से पाक, आज उसकी सालगिरह उधर जाना है, इससे पाक उधर जाना है। हर वक्त हम दुनिया से खेलते हैं, थक जाते हैं कई दफा, लेकिन लोग हमसे खुश नहीं होते। उसको खुश कर, उधर जाओ, उधर। शुरू में अच्छा लगता है एक हद तक, फिर उसके बाद दिल भरने लगता है। जब आप अल्लाह की तरफ आते हैं आपकी जिंदगी पाकीज़ा, सोचे पाकीज़ा। होम स्वीट होम का अगर आपने कॉन्सेप्ट लेना है ना, तो वो मर्द और औरत यानी हस्बैंड एंड वाइफ जो दोनों दीन पे हों, वो घर दुनिया में जन्नत का घर है। वसल्लम का घराना इसमें बेहतरीन मिसाल है। आपके घर में ना आइकिया का फर्नीचर था, ना बेड एंड बाथ के कुशन और गद्दियां थी, ना आपके घर में कोई बहुत कीमती बर्तन थे, लेकिन आप इतने खुश रहते थे अपने घर वालों में। आपको अपनी बीवियों से इंतहाई मोहब्बत थी। जब मस्ती से फारिग होते, दीन के कामों से फारिग होते, घर आ जाते, बीवी के साथ काम कर रहे हैं, कभी हंस रहे हैं, कभी बोल रहे हैं, कभी आपकी बीवियां एक दूसरे पे आटा मलती हैं और आप उनको देख के मुस्कुराते, कभी घर साफ करते, कभी बीवियों से बात करते। आपकी बीवियां कहती हैं, जब अल्लाह के नबी हमारे साथ होते हैं, हमें ऐसे लगता हमारे सिवा इनको किसी चीज से कोई सरोकार नहीं है। लेकिन इतने में मौजिन की आवाज आती है, अल सलाह है अल फलाह, इस तरह हमारे पास से उठ के चले जाते जैसे मैं जानते भी नहीं। ये है होम स्वीट होम। फिर बीवी को यकीन है, मैं रोक नहीं सकती, जो मर्जी कर लो इन्होंने जाना है। हाँ, अगर बीवियों की मोहब्बत में नमाजें जमात तो छोड़िए कजाई हो जाए तो हयाते तैयब नहीं है। सच्ची खुशी आजमाने के लिए अगर हम चंद महीने का टारगेट खुद को देना, ट्रायल बेस पे हम हर मुमकिन तरीके से सुन्नत तरीका फर्ज को पूरा करना और इसी तरह को ले, आपको ऐसी लज्जत मिलेगी, फिर आप उसको छोड़ेंगे नहीं। जस्ट टेक अ सैंपल, एक हफ्ते के लिए अपने बच्चों से मियाँ से कहें, जस्ट फॉर 1 वीक वी विल डू एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू सुन्ना। हम अपने घर को ऐसा बनाएंगे, ये करेंगे, अच्छे काम करेंगे, इसमें ये होगा, ये हमारा घर वाकई मुस्लिम घर बनेगा। करके देखिए, वो लज्जत बहुत खूबसूरत लगेगी और आखिरत की जजा उसके बाद अभी अक्सनी माँ का अनुयामलो, जो करते हैं वो नहीं उससे भी अच्छा। फैजा करात अल कुरान फस्तइज बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, और जब आप कुरान पढ़ने लगो तो शैतान रजीम से अल्लाह की पनाह मांग लिया करो। इससे इन लोगों पर तसल्लुत हासिल नहीं होता जो ईमान लाते और अपने रब पर भरोसा करते हैं। इसका जोर तो इन्हीं लोगों पर चलता है जो इसको अपना सरपरस्त बनाते और इसके बहकाने से शिर्क करते हैं। जैसे सूरत बकरा में हमने पढ़ा ना, ये है वो आयत जिसकी बुनियाद पे हम कुरान की तिलावत से पहले आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम पढ़ते हैं, और किसी काम से पहले नहीं पढ़ना चाहिए, कुरान की तिलावत से पहले। भाई क्यों, हम कोई फिल्म देखने लगे हैं जो कह रहे हैं आउज़ु बिल्ला? नहीं, क्यों? क्योंकि जो ही कुरान खोलता है शैतान परेशान हो जाता है, उसको पता है अब ये मेरे हाथों से गया। तो आउज़ु बिल्ला शऊर से पढ़ा करें, जब भी यहां आ रहे होते हैं ना सुबह, पढ़ के आया करें। आप देखिए, यहाँ के भी शैतान आपको इंशाल्लाह नहीं बहका सकेगा। कुछ और चीजें भी जिनकी वजह से शैतान हमें नहीं बहकाता, 10 चीजें हैं, नोट कर लीजिए। आउज़ु बिल्लाह कसरत से पढ़ने से, मुआवज़तैन यानी कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास और फलक पढ़ने से शैतान भागता है, आयतुल कुर्सी की तिलावत से भागता है, सूरत बकरा की तिलावत से भागता है, इसकी आखिरी 2 आयतों से भागता है, सोने के अस्कार कर लेंगे तो शैतान भाग जाएगा, 100 दफा ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्क व हुवा अला कुल्ली शयइन कदीर कहने पे, और ये बुक्स में मिल जाएगा आपको, घबराए नहीं। फिर जिक्र इलाही की कसरत हो वहां से शैतान भाग जाता है, फिर वुजू से शैतान भाग जाता है और नमाज से शैतान भागता है, फजूल खाने और बेकार गुफ्तगू से परहेज पर शैतान भाग जाता है। किन चीजों से शैतान हम पर आता है ये भी लिख लें, 4 चीजें, 4 रास्ते हैं जिनसे शैतान हमारे दिल पे काबू पाता है। नंबर 1, ज्यादा खाना, ओवर ईटिंग, ज्यादा नजरों का दौड़ाना, इधर देख उधर देख यानी गंदी नजरें, लुक्स, और ज्यादा सोशलाइज करना, मेल जोल, और ज्यादा बातें करना, बीइंग टॉकेटिव। अल्लाह ताला हम सबको बचा के रखे। फिर आगे फरमाया, वैसा बदलना आयत मकान आयतिन, जब हम एक आयत की जगह दूसरी आयत नाजिल करते हैं और अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि वो क्या नाजिल करे, तो ये लोग कहते हैं तुम ये कुरान खुद क्यों घड़ते हो? असल बात यह कि इनमें से अक्सर लोग हकीकत से नावाकिफ हैं। इनसे कहो, इसे तो रूहुल कुदुस ने ठीक ठीक मेरे रब की तरफ बतदरीज नाजिल किया ताकि ईमान लाने वालों के ईमान को पुख्ता करे और फरमाबरदारों को जिंदगी के मामलात में सीधी राह बताए और इनको फलाह और सआदत की खुशखबरी बख्शे। हमें मालूम है लोग तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं। अल्लाह के नबी से को जो बातें करते थे ना, अल्लाह उसकी जिक्र कर रहे हैं। क्या कहते थे? इस शख्स को एक आदमी सिखाता पढ़ाता है, हालांकि इनका इशारा जिस आदमी की तरफ है उसकी जुबान अजमी है और ये शख्स साफ अरबी जुबान बोलता है। इन्नल्लज़ीना ला युमिनून बिआयातिल्लाही, हकीकत यह है कि जो लोग अल्लाह की आयत को नहीं मानते, अल्लाह कभी इनको सही बात तक पहुंचने की तौफीक ही नहीं देता। हाईलाइट करिए, दुआ कीजिए अल्लाह हमें आयतों का ईमान दे दे। और ऐसे लोगों के लिए दर्दनाक सजा है, ऐसे लोगों के लिए दर्दनाक अजाब है। झूठी बातें नबी नहीं घड़ता, बल्कि झूठ वो लोग घड़ रहे हैं जो अल्लाह की आयत को नहीं मानते, वही हकीकत में झूठे हैं। आयत बड़ी प्यारी है। बाज दफा इंसान मजबूर कर दिया जाता है, मक्की दौर में जब चारों तरफ इस तरह के हालात थे, तो कुछ लोगों को जब मजबूर कर दिया गया तो उन्होंने जान बचाने के लिए उनकी मनपसंद बात कह दी। अम्मार बिन जासिर के साथ ये मामला हुआ। उन्होंने काफिरों ने जबरदस्ती कहा कि जब तक तुम मोहम्मद सल्लम का इनकार नहीं करोगे हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अब मार देते क्या करते, इन्होंने कह दिया। वहां से अल्लाह के नबी के पास आए, कहा अल्लाह के नबी आज तो मैंने बहुत जुल्म किया। क्या किया? मैंने तुमको खुश करने के लिए वो कह दिया जो मुझे नहीं कहना था। कहा ये बताओ कि जब उनकी बात पर वो जुमले बोल रहे थे तो उस वक्त तुम्हारे दिल की हालत क्या थी? कहा अल्लाह के नबी दिल में बहुत ईमान था, आपकी मोहब्बत भी थी ईमान भी थी। तो कहा अच्छा, फिर अगर कभी घेर लिए जाओ तो दोबारा भी यही कहना। इस पे ये आयत नाजिल होंगी, मेरे और आपके लिए इसमें बहुत बड़ा सबक है कि अल्लाह ताला बंदे के दिल पे नजर रखता है, जुबान पे भी नजर रखता है। और जो बंदा अपने हालात का नाम लेकर अगर कभी कोई गलत काम करता है तो उसका मामला उसके दिल पर रखा जाएगा कि उसका दिल किस किस्म का था। आयतों को पढ़िएगा। मन कफर बिल्लाहि मिन बादी ईमानिही इल्ला मन उक्रिहा व कल्बुहु मुतमइन्नुन बिल ईमान। जो शख्स ईमान लाने के बाद कुफर करे, फिर अगर वो मजबूर किया गया और दिल इसका ईमान पर मुतमइन हो, तब तो खैर है। मगर जिसने दिल की रजामंदी से कुफर को कबूल कर लिया और इस पर अल्लाह का गजब है, ऐसे सब लोगों के लिए बड़ा अजाब है। ये इसलिए कि उन्होंने आखिरत के मुकाबले में दुनिया की जिंदगी को पसंद किया। इसको हाईलाइट करें। ऐसे वक्त में अमूमन मजबूरी दुनिया ही होती है। और अल्लाह का कायदा है कि वो इन लोगों को राह निजात नहीं दिखाता जो इसकी नेमतों का कुफरान करें। ये वो लोग हैं जिनके दिलों और कानों और आंखों पर अल्लाह ने मोहर लगा दी। ये गफलत में डूब चुके हैं, जरूर है कि आखिरत में यही खसारे में रहेंगे। बखिलाफ इसके जिन लोगों का हाल ये है कि जब ईमान लाने की वजह से वो सताए गए तो उन्होंने घर बार छोड़ दिए। हाईलाइट करें, खुद से पूछें, क्या मुझे कभी ईमान लाने की वजह से घर छोड़ना पड़ा? हिजरत की, क्या मुझे अल्लाह के लिए हिजरत करनी पड़ी? राहे खुदा में सख्तियां झीली, क्या मुझे अल्लाह के रास्तों में कभी सख्ती झीलनी पड़ी? और सब्र से काम लिया, क्या मैं अल्लाह के दीन के मामले में जो आजमाइशें मुझ पे आती हैं उसका वावीला करती हूँ या उस पे सब्र से काम लेती हूँ? अल्लाह ताला में सब्र की तौफीक दे। अगर ये सब कर लिया, इतने काम कर लो, हाईलाइट कीजिएगा इस बात को, इतने काम करोगे तो इन्ना रब्बक मिन बादिहा लगफूरुर रहीम, फिर तेरा रब इन सब बातों के बाद बख्शने वाला और मेहरबान है। हम क्या कहते हैं, मिन कबलीहा, लिख ले, बादिहा को कबलीहा बनाया हुआ है, इन सब से पहले ही अल्लाह माफ कर देगा। बड़े बड़े कबीरा गुनाह करते हैं और कहते हैं अल्लाह गफूरुर रहीम है, माफ कर देगा। भी कैसे कर देगा, इतने बड़े बड़े काम करने के बाद अल्लाह ने कहा तो आप में उसके बगैर कैसे बच जाएंगे? अल्लाह ताला हमें नाफरमानियों से बचा ले। फिर कहा याद करो, अब क्यामत का दिन लाइए। आज हम दुनिया बनाने के लिए लोगों की और अपनी अल्लाह को नाराज करते हैं, क्यामत के दिन क्या होगा? यौमताति कुल्लु नफ्सिन तुजातिलु अन नफ्सिहा, उन सब का फैसला उस दिन होगा जबकि हर नफ्स अपने ही बचाव की फिक्र में लगा होगा और हर एक को उसके अपने किए का बदला पूरा पूरा दिया जाएगा और किसी पर जरा बराबर जुल्म न होने पाएगा। इमेजिन करें, अदालत लगी हुई और हर बंदा अपनी सफाई पेश करे, मुझे छोड़ दो, मेरी जान बचा लो। माँ बच्चों से जान छुड़ा रही होगी, बच्चे माँ बाप से बेजार होंगे, बीवियां शौहरों और शौहर बीवियों को मुजरिम बनाकर अपने आप को बचा रहे होंगे। आज कभी किसी को राजी करने के लिए अल्लाह को नाराज ना करें, क्यामत के दिन वो कभी आपसे खुश नहीं होंगे बल्कि आपके खिलाफ बातें कर रहे होंगे।